ಐಶ್ವರ್ಯಮಾಮ್ ರಸಾತಳ ಅಭ್ಯುಜಹಾರಭ್ಯಸಹಾದಿಶೂಕರ. ಸಹ ವೈ ಭವಾನಾತ್ಮ ವಿನಿರ್ಮಿತಂ ಜಗತ್ ಭೂತೇಂದ್ರಿಯಹಂತಕರಣ ಆತ್ಮಕಂ ವಿಭೂ. ಸಂಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯನ್ ಅಜಮಾಮ್ರಸಾತಳ ಅಭ್ಯುಜಹಾರಭ್ಯಸಃ ಆದಿಶೂಕರಃ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಸಹ ಬಹ ವೈ ನಿಶ್ಚಯ ಭವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಆತ್ಮ ಅಪನೆ ಸೆ ವಿನಿರ್ಮಿತಂ ನಿರ್ಮಿತ ಜಗತ್ ಜಗತ್ ಭೂತ ಭೌತಿಕ ತತ್ವ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣ ಮನ ಹೃದಯ ಆತ್ಮಕಂ ಸೇವನ ವಿಭೋ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯನ್ ಪಾಲನ್ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಅಜ ಹೇ ಅಜನ್ಮ ಮಾಂ ಮುಜ್ಕೋ ರಸಾತಳ ರಸಾತಳ ನಾಮಕ ಅಧೋಲೋಕ್ಸೆ ಅಭ್ಯುಜಹಾರ ಬಹಾರ ನಿಕಲ ಅಂಭಸಹ ಜಲ್ಸೆ ಆದಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶುಕರ ವರಹ. ಅನುವಾದ ತಥಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾ ಸ್ಮೃತಿ ಅಭಯ ಚರಣ ಅರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भगवान, आप अजन्मा है, एक बार आपने आदि शुकर या वराह रूप में मुझे ब्रह्मांड के नीचे के जल से बाहर निकाला था। अपने संसार के पालन हेतु अपनी शक्ति से सभी भौतिक तत्वों, इंद्रियां तथा मन की उत्पत्ति की है। कृपया दोहराइए, हे भगवान, आप अजन्मा है, एक बार अपने आदि शुकर वराह रूप में मुझे ब्रह्मांड के नीचे के जल से बाहर निकाला था। अपने संसार के पालन हेतु अपनी शक्ति से सभी भौतिक तत्वों, इंद्रियां तथा मन की उत्पत्ति की है। तात्पर्य, यहाँ पर उस समय का उल्लेख है जब श्री कृष्ण वराह के रूप के प्रकट हुए थे और जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया था। हिरण्याक्ष असुर ने धरती को इसकी कक्षा से अलग करके गर्भोदक सागर के जल में फेंक दिया था। तो भगवान ने आदि वराह का रूप धारण करके धरती को उद्धार किया था। ओम अज्ञानात निरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं कदामहं ददाति शोकदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सर्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणलयिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णाधिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमिने गौरवदशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभिः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द भागवत की कक्षा में आप सभी भक्तों को स्वागत है। विशेष रूप में श्रील प्रभुपाद जी की प्रत्यक्ष शिष्य श्रीमान मनु प्रभु और श्रीमान समीक ऋषि प्रभु, दोनों का हम विशेष स्वागत करते और जितने वरिष्ठ भक्त वृंदावन प्रभु और सभी को हम स्वागत करते हरे कृष्ण। तो अब इस जो पालन करता है वो संघार मूर्ति धारण किए हुए हैं। कौन? पृथ्वी महाराज। पृथ्वी महाराज भगवान का ही, विष्णु का ही अवतार है, शक्ति वैश अवतार, विशेष रूप में आदिराज के रूप में जाने जाते हैं। पृथ्वी को पालन करने के लिए ही उनको ये विशेष अवतार लिए थे। लेकिन अब ये पृथ्वी को संहार करना चाहते हैं। संहार कार्य किसका है? शिव जी का, रुद्र रूप में संहार करके, लेकिन उन्होंने धनुष बाण धारण करके ही पृथ्वी के पीछा, पृथ्वी को मैंने छिन्न भिन्न कर देना चाहते थे। इसलिए पृथ्वी ने उनकी अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए गौ रूप धारण करके ही पृथ्वी और आकाश जो स्वर्ग के बीच में अंतरिक्ष में भाग रही थी, और उसके पीछे महाराज पृथ्वी भाग रहे थे। तो भगवान धराधर के रूप में भी जाने जाते हैं, धरा को वही धारण किए थे पहले। माता पृथ्वी ने देखी कि अभी इस विशेष संकट में तो उद्धार करने के लिए और कोई उपाय नहीं है, वही रक्षा कर सकते हैं। कौन? जिन्होंने संहार के लिए पीछे भाग रहे हैं धनुष बाण लेकर, उन्हीं के शरण में जाऊं तो वही मुझे रक्षा कर सकते, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए माता पृथ्वी ने विशेष रूप में अभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनके थोड़ा करुणा की भावना उनके हृदय में उद्रेक कराने के लिए प्रयास कर रही, और विशेष रूप में आज के जो श्लोक है उसी भावना से उन्होंने मैंने उनकी जो पूर्व कृति को व पूर्व जो कर्म को, जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान की जो दिव्य कार्यकलाप को स्मरण दिलाती है, किस प्रकार उन्होंने पहले स्वयं ही पृथ्वी को धारण किए थे, उठाए थे कहां से? गर्भोदक सागर से। तो उसी को स्मरण दिलाने के लिए कि भगवान के मन में थोड़ा अनुकंपा व पृथ्वी के प्रति करुणा की भावना आ जाए और पहले की स्मृति उनको स्मरण हो जाए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि श्लोक की टीका में स्वामीन कारुण्यम उत्पादयंती पूर्व वृत्तं स्मारयति सहवायति दाभ्याम। विशेष में करुणा की भावना जैसे भगवान के अंदर में उत्पन्न हो जाए, उसी भावना को लेकर माता पृथ्वी ने विशेष में श्लोक की आवृत्ति की कि उनको स्मरण दिला रहे कि पूर्व में पहले आप तो स्वयं मुझे ही उद्धार किए थे, कहां से? गर्भोदक सागर से। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही बरहा के रूप में हिरण्याक्ष ने धरती को इसकी कक्षा से अलग करके गर्भोदक सागर में फेंक दिया था। ये कब का घटना है? मनोत्तर से, कौन सा मनोत्तर? दो मनोत्तर में दो बार बरहा भगवान ने अवतीर्ण हुए थे भागवत के आधार पर, पहले स्वयंभु मनोत्तर में और दूसरा चक्षुष मनोत्तर में। तो ये स्वयंभु मनोत्तर की बात है, जो भी स्वयं मनु को सृष्टि करके ब्रह्मा जी की अन्य पुत्र मान्यता स्वीकार नहीं करते थे, सृष्टि कार्य ग्रस्त आश्रम में आकर फिर सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कोई सहायता नहीं कर रहा था, पहले तो चारों कुमार मना कर दिए, हम नहीं सृष्टि करेंगे, हम इस कार्य में नहीं फंसेंगे। वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, बाल ब्रह्मचारी होकर रहे, नारद जी को बोले वो भी मना कर दिए। तो फिर उन्होंने स्वयं मनु को उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने, और उनको कहे दोनों एक साथ में, एक पुरुष और एक स्त्री के शरीर में सतरूपा और स्वयं मनु सतरूपा, दोनों को उत्पन्न करके इनको सृष्टि कार्य के लिए प्रेरणा दे रहे थे। अब विशेष में स्वयं मनु को उपदेश कर रहे थे कैसे सृष्टि को किया जाए, ये मानव जाति के पिता है कौन? मनु, स्वयं मनु। लेकिन जब वो मनु को उपदेश, मनु कह गया आपको सृष्टि करने के लिए मेरे पास जागा कहां पर सृष्टि, मैंने आप जो उपदेश दे रहे कहां पर मैं आज राजनीति करूंगा, सृष्टि कार्य कहां पर प्रारंभ होगा? तो ब्रह्मा जी को तो ध्यान में आया यार पृथ्वी है नहीं, उसकी पृथ्वी जो धरा कहां पर सृष्टि करे, धरा है नहीं, पृथ्वी अपनी कक्षा में है ही। बड़ा चिंतित होकर उन्होंने ध्यान कर, मैंने सब देवता लोग ने भी सभी चिंतित हो, सभी लोग एक साथ में जो बड़े उद्वेग के साथ चिंतन में व्यस्त थे, उस समय हटात ब्रह्मा जी को छींक आ गई जोर से, तो छींक से छोटा अंगूठा के अग्रभाग के छोटा रूप धारण करके एक सुअर निकला है ब्रह्मा जी की छींक से। तो लेकिन बोली ये अद्भुत, ये सुअर कहां से निकला मेरे नाक से? तो तुरंत ही वो आकाश में चला गया, देखते देखते ही हाथी समान, एक विशाल हाथी के समान रूप धारण कर लिया। तो इसको देखते हैं देखिए, फिर ब्रह्मा जी जब देखकर कुछ चिंतन करते थे, सोच रहे थे कि हो सकता है कि भगवान विष्णु ही होंगे, ऐसा अद्भुत कर्मा कौन होगा? पहले तो अंगूठा के अग्रभाव के छोटा सा रूप धारण करी प्रकट हुआ नाक के छींक से, लेकिन आकाश में जाकर इतने विशाल रूप धारण कर लिया हाथी है। ब्रह्मा जी ने विचार कर रहे थे अपने अन्य ऋषियों के साथ में, चारों कुमार और सप्त ऋषि और सब जो वरिष्ठ लोग थे देवताओं के साथ सलाह करते थे, कौन है ये जो इतने आकाश में तुरंत प्रकट होकर विशाल रूप में। तो भगवान ने उनके चिंतन को, यह भगवान विष्णु है कि नहीं, ऐसा ही उनको थोड़ा शंका भी था, लेकिन कहते कि ये तो भगवान अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु का ही कार्य होगा। ऐसे चिंतन करते ही बाहर बराहदेव ने बहुत जोर से गर्जना की, गर्जना करके समर्थना की, समर्थन की कि हाँ हाँ है, तो समर्थन की कि हाँ मैं हूं, मैं वही विष्णु हूं जिसको आप चिंतन कर रहे हो, इसके बारे में सोच रहे हैं। इसलिए फिर वो भागवत में ये तीसरे स्कंद में ही आता कि देवता लोगों ने जो स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, तो उन्होंने फिर प्रवेश की, किसमें, जल में प्रवेश की, ये गर्भोदक सागर के अंदर फेंक दिया था पृथ्वी को हिरण्यकश्यप। तो उसी बात को स्मरण करके माता पृथ्वी ने उनको स्मरण दिला रहे हैं महाराज पृथ्वी को, पहले आप ऐसे ही कि मुझे उठाए थे कहां से, गर्भोदक सागर से, कि संस्थापयन अज माम रसातला अभ्य जुहार अभ्यस आदि शुकर है, आप प्रारंभिक शुकर के रूप धारण करके ही मुझे बाहर निकाला था, अभ्य जुहार तो बाहर निकाला था जब मैं रसातल में मुझे फेंक दिया था, कौन फिर लख ने फेंक दिया था, आपने ही ये प्रभु मुझे वहां से उद्धार किया था। भगवान ने एक अद्भुत सूर का वेश क्यों धारण किए थे, अन्य रूप धारण करने का कोई भी रूप तो भगवान धारण कर सकते थे, विशेष रूप में सूर का रूप क्यों धारण कर लिया, जो काम इनके ही काम करना था, कीचड़ के अंदर से उठाना था वस्तु, कीचड़ के अंदर कौन जा सकता है, सूर ही जा सकती मैंने इसका अंदर। तो भगवान इसलिए दिव्य शुकर का वेश है, केशव अधृत शुकर रूप जय जगदीश हरि, इसलिए शुकर रूप धारण करके, सूर का रूप धारण करके उन्होंने चूंकि गर्भोदक सागर में प्रवेश करके ही जो रसातल में ही डाल दिया था पृथ्वी को उन्हें, तो वहां से उनको उठाए थे, कैसे उठाए थे, दोनों दांतों के ऊपर ही पृथ्वी को धारण करके ही ऊपर उठे थे, लेकिन हाथ में क्या था, हाथ में भी एक हाथ गदा भी था उनके हाथ में, क्योंकि जानते थे कि वो लड़ाई करने आएगा, कौन हिरण्यक है। वहां तो संक्षेप में बस कहा गया, जब भगवान ने पृथ्वी को उठाकर आ रहे थे, वो राक्षस आकर उनको बाधा देने के लिए चाहता, लेकिन बहुत अनायास में भगवान ने उसको वध कर दिए थे, लेकिन इसके साथ में युद्ध की अन्यत्र हिरण्यक्ष के साथ युद्ध का अन्यत्र इसकी विशेष चर्चा की गई, लेकिन वहां पर तीसरे स्कंद के प्रारंभ से जो सूर अवतार के बारे में कहा जाता तो केवल इतना ही कहा गया कि भगवान ने इसको वध कर दिए। अब वध कर दिए तो फिर वो अब पृथ्वी को लाकर फिर अपनी योग शक्ति से भगवान पानी के अंदर डूब गया था, फिर पानी के ऊपर स्थापन कर दिए, फिर उसको रख दिया। तो प्रभुपाद जी कहते भगवान कहीं भी रख सकते हैं, उनकी योग शक्ति नहीं, उनकी इच्छा से कैसे भी रखते, चाहे आकाश में शून्य में भी रख सकते हैं, जल के ऊपर भी रख सकते हैं, भगवान की जैसे चाहते ऐसा कर सकते। आजकल के वैज्ञानिक लोग इसकी चिंतन करके अपना स्पेकुलेशन करके इसका कारण क्या है हेतु क्या समझ नहीं पाएंगे, भगवान जो कुछ करते हैं अपनी इच्छा से, तब इच्छा मते सब कुछ उनकी इच्छा मते होता है, इच्छा मते ब्रह्मा करेने से जनो तब इच्छा मते विष्णु करेने पालन तब इच्छा मते शिव करेने संघार तब इच्छा मते माया सीजे कराकर, भगवान इच्छामय है, उनके कैसे भी चाहेंगे जहां भी पृथ्वी को रखना चाहते हो रख सकते हैं, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। तो विशेष रूप में इसलिए माता पृथ्वी ने भगवान को उस लीला के उस बराह रूप अवतार में जो उन्होंने पृथ्वी के प्रति इतने दयालु बनकर और उनको उद्धार किए थे, रसातल से क्षीरोदक निश्री गर्भोदक सागर से ही उनको उठाए थे, उठाकर फिर इनके कक्षा में उनको स्थापित किए थे, और स्वयं ही केवल रखे नहीं थे, भगवान भी अजन्मा है और ये जगत के जो कुछ भी सृष्टि के सृष्टि उन्हीं से ही प्रारंभ होती है, आपसे ही क्या होता है, सब ही भगवान आत्म विनिर्मित जगत, आपने ही ये जगत की निर्माण किया है, आपके द्वारा निर्मित हुआ और ये सब भूतेन्द्रिय अंतःकरण आत्मक ये सब भी आपसे ही सृष्टि हुआ। जगत को सृष्टि किए इंद्रिया और मन, भौतिक तत्व सारे जगत, भौतिक तत्व इंद्रिया मन हृदय ये सब भी आपसे ही उत्पन्न किया। आपने ये सारे जगत को पालन कराने के लिए, जगत को ठीक से पालन करने के लिए आपने इसको सृष्टि किया है। हे भगवान आप अजन्मा है, एक बार आपने आदेश पर बराह रूप में मुझे ब्रह्मांड के नीचे से बाहर निकला था। संसार के पालन हेतु आपने शक्ति से ही सभी भौतिक तत्वों इंद्रिया तथा मन की उत्पत्ति की। इसके जैसे वर्णन विशेष रूप में भगवान कपिल देव ने इसके वर्णन करते हैं कैसे इनकी सृष्टि हुई है, तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय में वहां प्रारंभ से कहते कैसे ये सब भगवान कैसे इनको सब उत्पन्न किए। पहले मुख विराट पुरुष, पहले तो ब्रह्मांड थे, अंडाकृति ब्रह्मांड था और उसी में 14 ब्रह्मांड संपूर्ण विराट पुरुष के ही शरीर में ही निवास करते हैं। तो नीचे जो नीचे 7 लोग धरा, फिर ऊपर में जो उद्ध में जो 7 लोग, ये संपूर्ण 14 ब्रह्मांड भगवान विराट रूप में अवस्थित है। और उसी से किसी प्रकार एक के बाद एक की सृष्टि हुआ, उसके वर्णन वहां पर कपिलदेव ने करते हैं कि पहले मुख का प्रकट हुआ है, पहले मुख प्रकट हुआ, फिर आस्ते आस्ते अन्य इंद्रियां से प्रकट हुआ, और इंद्रियों के प्रकट होते ही इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता भी प्रकट होते हैं। आंख प्रकट हुआ तो सूर्यदेव प्रकट हुए, फिर नाक के पहले वायु, जो दोनों नाक, नाक का सृष्टि हो गया तो फिर वायुदेव की सृष्टि हुआ, प्रत्येक इंद्रिया सृष्टि हुआ और उनका अधिष्ठाता देवताओं से सृष्टि हुई। तो ये सब भी भगवान का ही द्वारा ये सब सृष्टि कार्य को हुआ था। मन जब हुआ तो चंद्रमा, मन के अधिष्ठाता देवता कौन है? चंद्रमा। प्रत्येक इंद्रिया की एक अधिष्ठाता देवता है, जितने भी हमारा इंद्रिया, हाथ के अधिष्ठाता देवता कौन? हाथ के अधिष्ठाता देवता कौन? इंद्र। पैर का स्वयं विष्णु। ऐसे सब प्रत्येक इंद्रिया की एक अधिष्ठाता देवता भी है, लेकिन ये सभी की सृष्टि किसके द्वारा की गई? भगवान ने सृष्टि की इनको सब। उसी बात में कहते कि देखिए आप ये संसार को पालन हेतु आपने शक्ति से ही भौतिक तत्व को, 5 तत्व में जो भौतिक ब्रह्मांड बना हुआ ये भी आपने ही सृष्टि किया, और आपने ही ये सारे इंद्रिया मन का भी उत्पत्त किया, इंद्रिया को, मन को, सभी इंद्रिया इनका अधिष्ठाता देवता तथा मन, मन का भी अधिष्ठाता देवता, ये सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, आप ही सबके निर्माण किए हैं। और इतना ही नहीं, मुझे आपने उठाया था गर्भोदक सागर से, उस कथा को कैसे भूल गए आप, कि आपने मुझे, आप मेरे प्रति कितनी कृपा किए थे, उससे तो आपने मुझे अपना पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर लिए थे, धरा और बा पृथ्वी और वराहदेव के संयोग से उनका भी एक पुत्र भी हुआ था, क्या नाम उसका था? नरकासुर। लेकिन भगवान ये कहना चाहते थे कि तुम माँ ने पुत्र हो कि मेरा पत्नी हो, कोई भी हो, मेरा मुख्य कार्य क्या है? संसार को पालन करना। यदि प्रता और यदि प्रजाओं की बात, सृष्टि के अहितकर कार्य में कोई अधर्म की मार्ग पर जाएगा, पुत्र हो कि पत्नी हो, मैं छोड़ने वाला नहीं, बाप ने उसको वध कर देंगे। किसको? नरकासुर को। भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब लीला में प्रकट किया तो नरकासुर को वध कर दिया, क्योंकि वो बाणासुर के साथ में संग करके, बाणासुर के राक्षस में संग करके उसका मति भ्रमित हो गया था। वराहदेव और धरा के पुत्र था, पृथ्वी का पुत्र था, लेकिन वो तो बहुत अच्छा प्रारंभ से तो बड़े सज्जन था, धर्म के मार्ग पर प्रजाओं को पालन करता था, देवताओं को सम्मान करता था, लेकिन आस्ते आस्ते कुसंग के कारण उसकी मति भ्रष्ट हो गया था। तो भगवान ने उसको क्षमा नहीं किए, अपने पुत्र मिलकर उसको छोड़ दिया ना, क्या नहीं, इसको वध कर दिए। यहां तक कि द्वारका लीला में सभी संपूर्ण जदुवंशी को समाप्त कर दिए, तो देखिए ये उद्धत हो रहे हैं, सारा जदुवंश क्यों समाप्त किए भगवान ने, क्यों आस्ते आस्ते ब्राह्मणों को भी ये दुर्व्यवहार करने लगे। जैसे वो ब्राह्मण लोग में सप्तऋषि लोग ने आते थे भगवान को मिलने के लिए आ रहे थे, तो ये भगवान के पुत्र होने के नाते इनकी इतनी अहंकार बढ़ गया था कि क्या के सांब को बजा कर, सांब के पेट में कपड़े को देकर कपड़ों बांध के सही, जैसे गर्भिणी स्त्री, और ऋषियों को पूछ रहे थे कि महात्मा आप तो सब कुछ जानते, त्रिकाला के हो, बोलो इसके पेट में क्या है, कौन सा बच्चा अभी जन्म होने वाला है, है? तो क्रोधी थी उसमें सप्तऋषि कौन थे, दुर्वासा थे, क्रोधी है, कहे कि ठीक है, इसकी गर्भ से जो निकला वही तो निकलेगा, वही तुम्हारे वंश का ध्वंस का कारण बनेगा, जदुवंश के ध्वंस के कारण। डर गए भाई, भी थोड़ा निकालते ही, क्या हुआ, क्या निकला? मुसल पिंड है, लोहो पिंड निकला, तो वो लोग फिर भयभीत होकर भगवान को भी बोलने के लिए गए नहीं, उग्रसन को लेके देखा, उग्रसन कहा कि इसको घिसते हैं, मिला तो पूरा बस रहेगा ना, आप कारण बनेगा विनाश काल विपरीत बुद्धि, इसलिए वो भीम को दे दिया, भीम इसको घिस घिस कर थोड़ा सा टुकड़ा रह गया फेंक दिया पर। तो वही जो थोड़ा टुकड़ा रह गया था वही क्या बना, वो मछली खाया था उसके अंदर से वो निकला, लेकिन भगवान चाहते सब कुछ प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसका प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि जब कोई ब्राह्मण संस्कृति को नमः ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य जगत धिताय, जगत के हित के लिए केवल भगवान है, जगत धिताय कृष्णाय गोविंदाय, इसलिए भगवान के मुख्य कार्य जो जगत को पालन करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवानी युगे युगे, जो कोई पुत्र भी हो व पत्नी की कोई भी हो, यदि धर्म रक्षण में संसार को पालन करने में भगवान को सहायता नहीं करता है, अधर्म के मार्ग पर जाता है, तो भगवान उसको छोड़ते नहीं। इसलिए नरकासुर जो फिर कुसंग में आकर पुत्र तो उसको भी वध कर देते, और द्वारकावासी ये जो जदुवंशी वही भी जब एकदम सीमा के बाहर चले गए, क्योंकि उनको पराजय करने वाला कोई नहीं था संसार में, अजय थे, अपराजित थे, भगवान के पुत्र थे, बहुत घमंड बढ़ गया था इनकी। तो भगवान कहे जी मैं तो नित लीला को जो स्मरण करूंगी, ये सबको समाप्त नहीं करूंगा, तो ये बात में उत्पात मचाएंगे, जिसके लिए मैं आया था कि तो सब धर्म को संस्थापना करने के लिए आकर मैंने इतने सारे महाभारत युद्ध में और भिन्न सभी राक्षस को समाप्त करके गया, अब बात में इन्हीं को छोड़ जाएंगे, यही राक्षस की वृत्ति करेंगे, वो मेरा पुत्र नरकासुर की तरफ है, फिर उनको भी सारे समाप्त किए। इसलिए भगवान को इसमें कुछ लेना देना नहीं, कोई भगवान के सारे पुत्र वही है, भगवान के पुत्र को भगवान भगवान के सभी पुत्र है, इसलिए सर्वजोनि सुकंते या मूर्तया संभवंति जह तासांग ब्रह्म महज्जोनि राहुल बीजप्रद पिता, भगवदगीता के 14वें अध्याय के 4 नंबर श्लोक में भगवान जैसे कहते कि तो वही एक पृथ्वी जो जोनी के समान, और उसमें सभी बीजों को वही प्रदान करते हैं, कौन भगवान है, मूर्ति अंति जो तांग ब्रह्म तासंग ब्रह्म महत जो नहीं रहा बीज प्रद पिता, भगवान ही सबके बीज प्रद पिता है, तो उनके लिए कौन ऐसे, यदि कोई किसी कारण से किसी लड़ा में किसको पुत्र व किसको पत्नी मांगा, लेकिन प्रकृति में भगवान सभी के पिता है, एक साथ वो सभी के पिता होते हैं, इसलिए उन्होंने जैसे नरकासुर को वध किया था, जदुवंशियों को भी समाप्त कर दिए, केवल जगत के हित के लिए उनके मुख्य का जो कर्तव्य है धर्म संस्थापनार्थ है, ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हित, भक्तों को रक्षा करना, यदि वो दो कारण कहा जाए कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम, विनाशाय च दुष्कृतम ये माया ये गौण कारण है, मुख्य कारण क्या, परित्राणाय साधुनां, साधु संतों को आश्वासन देने में जो बाधा कोई भी शास्त्र आएगा सामने, भगवान उसको सहन नहीं करते, तो इसलिए माता पृथ्वी के ऊपर क्यों गुस्सा हुआ भगवान ने, वो लोग तो अधर्मी थे, जदुवंशी थोड़ा उद्धत हुए तो नरकासुर ने उद्धत हुआ तो उनको समाप्त विनाश किए, तो माता पृथ्वी को क्यों अभी धनुष धारण करके खड़े हैं इसको समाप्त करने के लिए, धनुष बाण लेकर क्या दोष था माता पृथ्वी के, सब छुपा लिए थे, सब बीजों बीज और औषधियों को सब छुपा, शस्य और औषधि को छुपा के रखी थी, सब कुछ पृथ्वी में है, पृथ्वी जो चाहे सब कुछ हमें दे सकती है, लेकिन जब प्रजा बड़ा धार्मिक होते हैं दुष्ट होते हैं तो फिर वो सब छुपा लेती है, जिसमें सत्य युग में लोग किसमें खाते थे, सब खाना पीना किसमें करते थे, सोने के गोल्डन एज, सोने का थाली सोने के बर्तन सोने के सब कुछ यूज करते थे, लेकिन क्योंकि धर्म के चार पैर मौजूद था, सत्य सोचो दया तप सभी धार्मिक थे, तो पृथ्वी सब कुछ दे रही थी, धर्म की एक पैर हास होने के कारण त्रेतया में फिर सोना को सब छुपा ली, चांदी बस क्या चांदी क्या बर्तन, चांदी में सब कुछ यूज करते थे लोग, रौप्य रौप्य जोग सुवर्ण जोग था, फिर रौप्य जोग, फिर द्वापर में ब्रास ब्रास मेटल पीतल के सब बर्तन वो सब कुछ यूज करते थे लोग, और कलयुग में कौन सा जोग है, लोहो जोग लोहो जोग स्टील एल्युमिनियम आस्ते आस्ते और भी डिग्रेड हुआ एल्युमिनियम है, तो ये जो सोना सो था कहां गया, सब जो सत्य युग में था, इतना सारे लोग सारे को सब पृथ्वी छुपा के रखी है, तो योग्य व्यक्ति जब नहीं होते सो छुपा लेती है, क्योंकि सोने के बर्तन अभी कलयुग की मनुष्य को देखो तो सोने के बर्तन में क्या करेंगे वो लेकर, सुना में इस मीट खाएंगे, गोमांस खाएंगे, शराब पिएंगे, तो सबको छुपा दिए पृथ्वी ने सब कुछ छुपा के रखी थी, किसी ने छुपा, लेकिन इसका पहले महाराज बेणो शासन करते थे। महाराज बेणो बहुत दुष्ट था, स्वयं को भगवान कहता था, ब्राह्मण को मुनि ऋषि किसी को भी ठीक नहीं करता था, आधर भी था, स्वयं को भगवान कहता था। बोला भगवान विष्णु की क्या पूजा करना है, मेरे पूजा करो है? तो स्वयं को भगवान सोचता था। माता पृथ्वी देखी तो इसलिए दुष्ट व्यक्ति के राज्य में एकदम ये दुष्ट को इसलिए सब छुपा ली थी। महाराज बेण की जो अराजकता को देखकर व उसकी अधर्म के मार्ग में उसका प्रवृत्ति को देखकर उन्होंने सब छुपा ली थी। लेकिन जब महाराज पृथु आ गए बेण के, बेण की मृत्यु होने के बाद ऋषि मुनि लोग फिर उसके शरीर को मंथन करके, जो उनको बाहु को मंथन करके किसको सूचित किए, पृथु महाराज आए, पृथु महाराज का राज अभिषेक हो गया, सभी ब्राह्मण ऋषि लोग ले किए। अब फिर भी यज्ञ हुआ, यज्ञ की आहुति तो भाग तो ले रही थी पृथ्वी, पृथ्वी भी एक देवी है, तो वो भी तैतीस कोटी देवताओं में से वो भी आती, वो जो यज्ञ में जो भाग लिया जाता वो भी भाग लेती है। इसलिए महाराज तो बड़ा क्रोधित हुई कि तुम यज्ञ में तो भाग तो ली, तो वो दुराचारी थे कौन, बेण। लेकिन अभी तुम्हें पता है कि मैं अभी साम्राज्य करने के लिए आ गया, तो इसलिए मेरे प्रजा को क्यों भूखे हैं, जो ये जो राजाभिषेक हो गया महाराज पुत्र के, तो प्रजा लोग ने आके निवेदन किया है महाराज है, उनका जो स्थिति उन्होंने बताया कि हमको सफिशियंट अन्न खाने के लिए नहीं मिल रहा है, भूखे से पूरे एक अस्थि कंकाल सार हो गए थे प्रजा, तो इसलिए महाराज पुत्र क्रोधित हुए। जब तुम यज्ञ के यज्ञ में आकर तुम अपने यज्ञ भाग स्वीकार किया, मुझे पता है मैं कौन हूं, और जब भगवान के अवतार को तुम देखते हैं, भगवान स्वयं अवतार, तो तुम्हारा कोई कर्तव्य है कि सब कुछ देना के लिए, सब प्रजा जो प्रजाओं की जो कुछ चाहिए सब देना चाहिए मेरे राज्य में, फिर भी तो छुपा के रखिए। इसीलिए क्रोधित होकर धनुष बाण लेकर भागे, और क्रोधित होगी ज्यादा किसके लिए, ये कौन सा रूप धारण कर लिए, गाय के रूप धारण कर लिए, पृथ्वी ने गाय के रूप धारण करके अंतरिक्ष में भागने लगे, तो उसको देखकर और क्रोध में आया। बोला अच्छा ये मेरे शरणागत न होकर हाथ जोड़कर शरणागत हो जाना चाहिए, वो तुरंत कह रहे कि ठीक है ठीक है जो चाहिए, मेरा अपराध हुआ क्षमा मांगना चाहिए, वो नौकर की गाय रूप धारण कर भाग रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, यदि कोई शरण में आ जाता तो फिर भगवान कहते कि अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मुक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान के शरण में कोई आता है तो भगवान इसको रक्षा करते, इसमें कोई शंका नहीं। तो देख रहा कि भगवान एक क्षत्रिय राजा की भूमिका निभा रहे, तो तुरंत इसको शरणागत हो जाना था, प्रकट होगी बस माफी, बोले ठीक है प्रभु मेरा गलती हुआ, जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो जो भागने लगी और गोरूप धारण करके, तो भगवान कहे कि मैं छोड़ने वाला नहीं, तुम छुपने से मैंने गोरूप ऐसे धारण करने से कपट गाय को मैं थोड़ी छोड़ता हूं। वो तो पहले कृष्ण लीला में भी वत्सासुर एक था, वो पछड़े का रूप धारण करके आया था, फिर कौन था वरिष्ठासुर, फिर बैल का रूप धारण करके आया, थोड़ी उनको छोड़ दिया मैं है? और तुम गाय रूप धारण कर भागोगे तो ऐसे नहीं चलेगा, जब तक तुम शरण में नहीं आए, जब तक भगवान के शरणागत कोई नहीं होता है, भगवान की कृपा की पात्र नहीं बन पाएगा। भक्तिनाथ ठाकुर इसलिए वो शरणागति की भजन में कहते कि सड़ांग शरणागति हुई बेजहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। नंद कुमार कृष्ण उस व्यक्ति के प्रार्थना को सुनते हैं जो शरणागति के छह अंग को अपने जीवन में उतार लेता है। अनुकूल्य तो संकल्प, प्रतिकूल्य तो वर्जनम, कृष्ण रक्षति इति विश्वास, गोत्रुक्ति वर्णम तथा आत्मलिखे प्रकारपन्नि सर्विधा शरणागति, यही से भक्ति की शुरुआत होती है। तो इसलिए शरणागत होकर पृथ्वी जो गो रूप लेकर भागने लगी तो भगवान ने क्रोधित हुए, इसलिए धनुष बाण लेकर उसके पीछा किया, और वो भी भागते रहे भागते रहे भाग मुने, लेकिन अंत में जब देख रहेगी तब जहां भी जा रहे पीछे देख रहे महाराज के, तो काल के समान जमराज के समान धनुष बाण लेकर खड़े पीछे ही, किसी भी मुहूर्त में उसको खंड खंड कर देंगे। तो इसलिए और कोई उपाय नहीं देकर फिर वो घूमकर हाथ जोड़ के अभी शरणागत हो रहे हैं, फिर अभी वो भगवान को शांत करने के लिए, उनकी जो क्रोध को शांत करने के लिए, उनके हृदय में अनुकंपा को जागृत कराने के लिए वो स्तुति कर रहे हैं। ये स्तुति जो विशेष श्लोक उनको उनकी जो पूर्व उनकी जो लीलाओं को व इनके दिव्य कर्म को उन्होंने स्मरण दिला रही है। प्राणीनाम धारणार्थ मान रसात रुद्र सिद्धर स्वामी कहते कि श्लोक टीका में प्राणीनाम धारणार्थ मान रसातला उद्धृतानी प्रजारक्षणे प्रवृतस्य मद बधो नो युक्त इति सह करुणा माह। इस प्रकार कहा करो भगवान के मन में करुणा की भावना को जागृत कराने के लिए कहते कि देखिए प्रभु आप विशेष रूप में प्राणियों को धारण करने के लिए प्रजाओं को ने पहले आप तो मुझे धरना रसातल से उद्धार किया था लेकिन अभी विशेष में प्रजारक्षण प्रभुतस्य आप प्रजाओं को रक्षा करने के लिए आपके जो कार्य है विशेष में प्रजाओं को पालन करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं आदि राज की भूमिका निभा रहे हैं तो फिर मेरे को बध कर देने से कैसा होगा। मैं तो एक नौका के समान है तो सारे मेरे ऊपर ही तिष्ठे हुए और आप मेरे को ही समाप्त कर देना चाहते तो पालन कैसे करोगे। इसलिए उन्होंने ऐसे कहकर विशेष में सर भगवान के मन में करुणा की भावना को जागृत कराने के लिए माता पृथ्वी ने प्रयास कर रही है। इसलिए भगवान की इसी लीला के कारण उनको धराधर बा भी कहते हैं धरा को धारण किए थे उसी को माता पृथ्वी ने याद करते हैं। काल जैसे जगन्नाथ मिश्र का भी क्या था परसों था महाप्रभु के आविर्भाव और काल था जगन्नाथ मिश्र के महोत्सव तो भी उसमें जब भगवान के नामकरण हो रहा था तो लीलाम्बर चक्रवर्ती जो कि सची माता के पिताजी थे इनके नाना होते थे किनके कुसुम्बर के तो उन्होंने आकर भी कहा था सर्वलोकेर करिबे इह धारण पोषण विश्वम्भर नाम इहार एत कारण। इस बच्चे के नाम क्या रहेगा विश्वम्भर। किस लिए विश्वम्भर रहेगा सर्वलोकेर इह करिबे धारण पोषण सर्वलोक को धारण करेगा और इसके पोषण भी करेगा इसलिए इसका नाम विश्वम्भर हो रहेगा एक नाम है। तो ऊपर तात्पर्य लगता है कि विश्व महाप्रभु की जो वो जो स्वयं भगवान विष्णु वा स्वयं ही जगत को धारण और पालन करने करता है तो ये अथर्ववेद की संहिता में भी कहा गया 3:3:16:5 में कहा गया कि विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाही स्वाहा। प्रभुपाद जी कोट करके कहते कि वेद में भी कहा गया कि विश्वम्भर प्रकृति में विश्व को धारण करेंगे और इसके पालन करेंगे। वो विश्वम्भर कौन है महाप्रभु है। तो इसी प्रकार कौरांग महाप्रभु ने भी अपने लीला में भी बराह रूप धारण किया था बराह रूप में दर्शन दिया था। किसको दर्शन दिया था मुरारी गुप्त को। एक बार मुरारी उठकर बराह रूप की कथा सुन रहे थे बराह अवतार की कथा चल रहा था हटात आवेश में आकर महाप्रभु भागे भाग भाग भागते भागते जाकर मुरारी गुप्त घर में घुस गए। मुरारी गुप्त बैठा देख रहा था क्या आवेश में क्या कहते थे सुअर 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 है शुकर 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 बोला शुकर कहा बेचारा प्रणाम तो किया मुरारी गुप्ता लेकिन शुकर कहा लेकिन महाप्रभु ने विश्वम्भर ने सीधा घुस गए कहा उसके अल्टर के अंदर घुस गए उनका सीताराम के लखनऊ के सीता जो अल्टर है उसके अंदर घुस गए देखे कि वहां पर भगवान के सामने क्या रखा हुआ कलश पानी के कलश बड़ा पात्र में जल भरा हुआ तो तुरंत ही अपने रूप चेंज कर दिए हाँ स्वर रूप अद्भुत यज्ञ शुक्र वेश धारण कर लिया और दोनों अद्भुत दांत भी उनके मुख में निकल आया और उसमें वो लोटा को धारण कर लिया है धारण करके मुरारी तक घूम के घूम पड़े कहे कि मुरारी स्तुति करो हमारा वंदना करो स्तुति गाओ तुरंत हमारा स्तुति करो। मुरारी क्या बोलेगा बड़ा अद्भुत रूप देखकर यज्ञ बराह देखकर पूरा आश्चर्यचकित हो गया। तो इसलिए सप्रवाच नमन भूमनु विस्मित हृष्ट ईश्वर बड़ा सब बड़ा आश्चर्यचकित होकर इनके ऐसे अद्भुत रूप को देखकर क्या कहेगी उसको समझ में नहीं है भूमि में पतित होकर प्रणाम किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या स्तुति करूं आपको प्रभु आप तो सारे अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक हो आपकी लीलाओं को समझना मेरे बस में नहीं है आपका लीला आपको ही पता है मैं कैसे बताऊं। तो महाप्रभु ने स्वयं कहे यज्ञ वराह के रूप में खड़ा होकर ऐसे अद्भुत ऐश्वर्य के साथ कहने लगे सुना हो मुरारी गुप्त कही मत सार वेद गोप्य कही तुमार गोचर आमी यज्ञ वराह सकल वेद सार आमी से करीनु पूर्वे पृथ्वी उद्धार। कौन कहा? महापुर ने कहे कि मुरारी गुप्त तुम सुनो, जो कि वेद की अगोचर जो अत्यंत गोप्य तथ्य को मैं तुझे आज तेरे सामने कह रहा, तेरी गोचर में सब जगत को जनाने के लिए तुम बता रहा हूं। आमी यज्ञ वराह सकल वेद सार, सारे वेदों में जिनकी वर्णन की जाती बा जिनकी स्तुति की जाती जिनकी पूजन की जाती वही यज्ञ वराह मैं हूं। देख ये वराह धर्म गई खड़े थे सामने, आमी से करीनो पूर्वे पृथ्वी उद्धार, मैं ही पहले पृथ्वी को उद्धार किया था, गर्भोदक सागर से उठाया था। अब ये दांत में तू देख रहा, तुरा सोच रहा कि पानी के कमंडल को धारण किया है, पानी के पात्र को धारण किया, इसलिए तो छोटा ही छोटा सा सोर है। लेकिन नहीं, ये छोटा सोर नहीं है, जितनी तुम जैसे देखते मैं जैसे चाहूंगा ऐसे रूप को पूरा विशाल बना सकता हूं। मैंने ही पहले ही पृथ्वी को उद्धार किया था जल से, मुरारी गुप्त कह रहे चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार वो बड़ा स्तुति है, तो मैं उसको यहाँ पर पूरा क्लास में है चैतन्य चरितामृत में, बहुत सुंदर स्तुति है। भगवान ने अपनी महिमा को बताया मुरारी गुप्त देख मैं को, और मुरारी की स्तुति किया बहुत सुंदर है। इसलिए वृंदावन अष्टक कहते हैं मुरारी सहित गौरव चंद्र जय 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 यज्ञ वराह सेवक रक्षामय। इसलिए मैं मुरारी गुप्त और यज्ञ वराह को प्रणाम करता हूँ, और ये यज्ञ वराह सेवक रक्षामय, विशेष रूप में यज्ञ वराह की क्या कार्य है? अपने सेवकों को रक्षा करना है। जब भी भगवान अवतीर्ण होते तो उनके यही मुख्य कार्य सेवकों को रक्षा करना, परित्राणाय साधुना, ये मुख्य कर्तव्य है। अब विशेष रूप में जो भी महाराज पृथु, तो एक आदि राज के रूप में एक राजा की भूमिका, आदर्श राजा की भूमिका निभाने आए, प्रजाओं को पालन करना इनके मुख्य कर्तव्य है। अब वो प्रजा पालन में जो उनको सहायता नहीं करता तो क्रोध आना स्वाभाविक है। क्षेत्रीय राजाओं के मन में क्रोध तुरंत आता है, रजगुण है। विशेष रूप में भगवान तो त्रिगुणातीत होकर लेकिन दिव्य क्रोध को प्रकट किए हैं। शौर्य, क्षेत्रीय के पास में क्या गुण होता है? शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्य, युद्धि, चाप्य, पलायनम, दान, ईश्वर भावश्च, क्षत्रं कर्म स्वभाव। तब अपने शौर्यता तेज और शौर्यता दिखाने क्षेत्रीय के स्वभाव है, इसलिए क्षेत्रीय राजा की भूमिका निभाते हुए बड़े तेज तेज के साथ शौर्यता के साथ पृथ्वी के पीछे किए, क्योंकि सहायता नहीं कर रही उनको प्रजा पालन में है, सब छुपा के रखे दे नहीं रही, प्रजा भूखे रह रहे अपने उनकी राज्य में, जो प्रजा भूखे मरणासन्न हो गए तो ये क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने बहुत चिंतन करके कारण देखा किसी लिए क्या नहीं दे रहे, तो देखिए तो यज्ञ तो सब ठीक हो रहा, बारिश भी ठीक चल रहा, इंद्र ने यज्ञ करता है, यज्ञान भवती पर्जन्य, तो यज्ञ होने से बारिश होता है, पर्जन्या तो अन्न संभव, तो अन्न नहीं मिल रहा प्रजाओं को, इसका मतलब पृथ्वी नहीं दे रही, सो छुपा के रखी, बारिश तो ठीक टाइम से वो इंद्र बारिश ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों शस्य की उत्पत्ति नहीं मिलती, ये सारे शस्यों के ग्रहण को बीजों को औषधियों को ये सब छुपा के रखी है पृथ्वी, इसलिए क्रोधित हुई पृथ्वी के ऊपर है। लेकिन सेवा कर हिंसा नी नापारो सहिते काटिनु आपन पुत्र सेवक राखीते। महाप्रभु ने हसन कहे मुरारी गुप्त के देखो, जो सेवक अर्थात मेरे जो भक्त है बा उनकी प्रति यदि कोई हिंसा करता है ईर्षा करता है तो उसको मैं सहन नहीं करता हूं। काटिनु आपन पुत्र सेवक राखीते, मेरा अपना पुत्र की मार डाले किसको है नरकासुर, क्योंकि ये भी जो दुराचारी बना पृथ्वी के संजोग से मेरे को एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था ओ नरकासुर, लेकिन वो हमारा पुत्र होते हुए जो दुराचारी बना उसको समाप्त कर दिया, इसको मैं स्वयं इसका सिर काट लिया। तो इसी प्रकार जादवों को भी ध्वंस किए, अब पृथ्वी उनकी पत्नी होने पर भी एक तो भू शक्ति है भगवान की शक्ति है, भगवान कहीं पत्नी होते हुए भी बराहर अवतार में उसके सभी प्रकार का रक्षण करते हुए भी जब देखे कि ये उनको सहायता नहीं करती है प्रजा पालन में धर्म रक्षण में, तो इसलिए क्रोधित होकर उसको भी समाप्त करने के लिए धनुष बाण लेकर पीछे खड़े हो गए, उनको पीछा करने लगे। तो इसी प्रकार हमें जानना चाहिए कि भगवान विशेष रूप में से कलयुग में किस में प्रकट हुए हैं है? गौरांग महाप्रभु वही यज्ञ बराहबा वही पृथु प्रजा पालन। लेकिन प्रभुपद में ये श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो विशेष रूप में जो उनके नामकरण होता है कि सर्वलोके करीब यह भरण धारण पोषण विश्वम्बर नाम यह रही कारण जो कहते प्रभुपाद जिसको तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, कहते कि यही है कैसे भरण पोषण करेंगे संसार में धारण कैसे संसार में रहने वाले इसको भरण पोषण कैसे करेंगे ये नहीं संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से नहीं? इस महान संकीर्तन आंदोलन को उन्होंने ही स्टार्ट किया। कौन शुरुआत किया? गौरांग महाप्रभु ने, इन्होंने ही संकीर्तन की जनक है गौर नीता है। अजान उलंबित भुजो कनका वदातो संकीर्तन कपितरो कमलाताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पाड़ो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतार। ये करुणा अवतार दोनों परम करुणा पहू दुई जन निताय गौर चंद्र सब अवतार सर शिरोमणि केवल आनंद कंद। ये अवतार इसलिए धारण करके आए विशेष रूप में, इसको इसी रूप में धारण करेंगे और पोषण करेंगे विशेष रूप में प्रजा कैसे संकीर्तन के माध्यम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ किए कलयुग के युग धर्म तथा प्रजाओं को रक्षण करने का उन्होंने ऐसी उपाय सोचा इस कलयुग में। इसलिए उन्होंने संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करके गए और ये संकीर्तन आंदोलन जो कि इसके माध्यम से विश्व में प्रसार होता प्रभुपाद कहते कि ये भी उन्हीं के आंदोलन, उसके भी पिताजी ओरिजिनल पिताजी वही है कौन गौरांग महाप्रभु, उन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ किया और हम उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब उन्होंने कहे कि पृथ्वी के अच्छे जतन अगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो ही मोरो नाम ये होगा ही, प्रभुपाद कहते महाप्रभु की वाणी ये झूठा नहीं होने वाला है। जो स्वयं भगवान कह के गए तो कैसे झूठा बना सकते, लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य होता है जजंती ही सुमेधसा यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इसी कलयुग में ये महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेकर उनकी पूजा करेंगे हैं। तो आप यदि संकीर्तन आंदोलन में शामिल होकर हरे कृष्ण मंत्र के प्रचार प्रसार बढ़ाओगे तो उससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, यदि आप यहीं पर इसमें शामिल नहीं होगे तो आप ही अपने दुर्भाग्य को बुला रहे हैं। इसके लिए भगवान का, लेकिन भगवान के आंदोलन तो प्रचार ही होगा, तो महाप्रभु ने कहे कि प्रचार होगा प्रचार होगा पूरा विश्व में सर्वत्र गांव गांव शहर शहर। पहले लोग सोचते थे कैसा संभव है, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी बहुत प्रयास करके 64 गोड़िया मठ बनाया और भारत के अंदर प्रचार किया, उन्होंने अपने शिष्य को इंग्लैंड भेजा जर्मन भेजा और कहीं अन्य कंट्री से भेजे, सब फेल्योर होकर वापस आ गए। तभी सब लोग क्या सोचने लगे, बोले अरे कोई ये नहीं है जो पृथ्वी पे कहा गया तो पृथ्वी पे अच्छा जतन अग्राधिक्रम है, पृथ्वी का अर्थ भारत ही है, क्योंकि कोई सन्यासी पहले गया नहीं, हमारा जितने आचार्य है राम शंकराचार्य भी स्वयं गए कोई वो सब भारत में ही प्रचार की, रामानुजाचार्य माधवाचार्य विष्णु स्वामी और निम्बार्क इनके प्रचार केवल बस कुमारिका से लेकर आप हिमालय तक बद्रिकाश्रम बस बस यही प्रचार की, कुमारिका से हिमालय यही प्रचार का स्थल। पृथ्वी केवल इसी कहा था बस इसी कहा, लेकिन प्रभुपाद जिसको आकर प्रमाण किए हैं नहीं है, पृथ्वी जो महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी है विश्व है पूरा प्लानेट है अर्थ प्लानेट है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से ही ये भरण पोषण होगा इस कलयुग में, जो भरण पोषण करेंगे भगवान इसी के माध्यम से, ये संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से है। और ये संकीर्तन प्रभुपाद कहे कि और कोई उपाय नहीं है, सारे विश्व में शांति सुख शांति सभी चाहते हैं लेकिन वो पता ही नहीं कैसे सुख शांति अनुभव किया जाए। अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल देने से कि यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द कॉमनवेल्थ नेशंस, इसमें से क्या होने वाला, दो दो महासमर हो चुका है हैं? पिछले जो महासमर हुआ था 1949 में 1942 जो युद्ध हुआ था तो उसमें से और उस वस्तु एटम बम था ही नहीं, थोड़ा थोड़ा नया नया निकलता था उसमें से फिर लेके वो डाल दिए थे कहां जापान में दो शहर में नागासाकी और हिरोशिमा, उसमें आज भी सब जो जन्म होते अग्नि होकर सब बच्चे जन्म लेते हैं हाँ? और वो अभी जो से सभी सभी देशों के हाथ में मारणास्त्र है, तीसरे विश्व युद्ध होगा तो कोई क्या होने वाला है, सब समाप्त हो जाएगा हाँ? इसलिए कहते कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे यूएन और कमल ये कुछ नहीं, केवल भरोसा एक कृष्ण भावनामित आंदोलन ही है हमारे जो इस्कन संस्था इसलिए मैं खोला हूं हाँ? कृष्ण भावनामित संघ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संग, जो ये सारे मनुष्य इसी को स्वीकार करेंगे चैतन्य महाप्रभु की प्रदर्शित संकीर्तन आंदोलन की को मार्ग को अपनाएंगे हाँ, तभी फिर सभी लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, सभी कीर्तन में लगेंगे संकीर्तन में, फिर यज्ञात यही कलयुग के लिए यज्ञ है। कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। तो फिर ये संकीर्तन यज्ञ करने से ही यज्ञात भगवती पर्जन्य पर्जन्यात आत्मसंभव। इसी प्रकार सभी अन्न विषय अपने खान पान और जो आवश्यकता को प्राप्त करेंगे अभी सुखी रहेंगे। इसलिए इस कलियुग में भगवान ने नाम रूप में ही अवतीर्ण हुए हैं। नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण, अन्य अन्य युग में बराह रूप में अवतीर्ण हुए बा कोई दूसरे पृथ्वी महाराज रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी का धारण पोषण कर रहे थे, लेकिन इस कलियुग में तो भगवान ने दिव्य नाम के रूप में अवतीर्ण हुए और नवतीर्ण होकर हम कहे ये संकीर्तन। स्वयं भगवान भी आकर ये मार्ग दिया कि नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। ये संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से ही भगवान की पूजा की जाती है इस युग में, और इसी के माध्यम से ही सारे जगत की भरण पोषण हो सकता है। नाम संकीर्तन के माध्यम से ही हम सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आध्यात्मिक भौतिक भौतिक आवश्यकता भी खान पान भी इसी से प्राप्त होगा। संकीर्तन करने से ही इंद्र प्रसन्न होकर ठीक टाइम से बारिश करेगा, फिर अनाज उगेंगे, आपको आहार भी मिलेगा। एक बार उधर से आंध्र प्रदेश में कई दिनों तक बारिश नहीं हुआ, लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था, बड़ा परेशान हो गया था प्रभुपाद जी के समय में। और दूसरे स्टेट से सो पानी लेकर आते थे। आत्म साक्षात्कार विज्ञान में प्रभुपाद जी एक आर्टिकल में लिखते हैं कि आंध्र के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर लोग लेटर लिखा प्रभुपाद जी के पास कि स्वामी जी आपका इतनी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, हमारे राज्य में लोग पानी भी पीने नहीं मिलता है, स्नान का दबाव भूल गए लोग, और दूसरे संस्था से भारतीय सेवक समाज और रामकृष्ण मिशन और इतने सब जितने चैरिटेबल संस्था सब लोग कुछ ला के दे रहे हैं हमारे हमारे राज्य में, सब भेज रहे, रिलीफ कार्य चल रहा है, सब आकर अपने अपने कुछ मदद कर रहे हैं। तो आपका इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संस्था तो आप भी कुछ मदद कीजिए। रूपा जी कहे कि ठीक है हम आपको मदद करने तो चाहते, हमारा जो फूड फॉर लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है आ जाएंगे, प्रसाद बांटेंगे, हम लोग खाना नहीं बांटते प्रसाद बांटते, लेकिन साथ साथ ये जो समस्या हुआ इसका जड़ क्या है, कारण क्या है, किसके लिए समस्या सृष्टि हुआ उसको जानना चाहिए, जड़ से इसके प्रॉब्लम को उखाड़ना चाहिए। बारिश नहीं हो रहा आपका राज्य में, इसका कारण क्या, संकीर्तन नहीं हो रहा, यज्ञ नहीं हो रहा, यज्ञात भवति, उन्हें भगवत गीता से कोट करते प्रभुपाद ने, यज्ञात भवति पर्जन्य पर्जन्यात अन्न संभव, आपके राज्य में और यज्ञ नहीं हो रहा है इसलिए बारिश नहीं हो रहा, तो आप यज्ञ कराओ सब, और इस कलियुग में के लिए यही यज्ञ है, यज्ञ संकीर्तन प्राय कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम संग पंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेर सा। रूपा जी श्लोक कोट करके लगते कि देखो यज्ञ करो, हर कलियुग के लिए यही यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, इसलिए हमारे इंटरनेशनल सोसाइटी के जो भक्त लोगों को मैं भेजूंगा वो देखिए आपको मदद करेंगे, संकीर्तन कैसे करना सिखाएंगे, गांव गांव में हरि संकीर्तन होगा, सभी लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सभी जो प्रजा सभी आपके राज्य के सभी को आप स्वयं इसमें प्रवृत्त कराओगे, सभी लोग नाचेंगे गाएंगे भगवान के नाम लेंगे, बारिश अपने आप होगा। जब तक इंद्र से बारिश पूरा राज्य में सब भरपूर बारिश नहीं होगा, आपका ये सूखा कहां से, पानी का शॉर्टेज कैसे मिटा सकते हैं, कितने दिन ऐसे दूसरे राज्य से लाकर यहां से लाकर कितना दिन पिलाओगे लोग हैं। रूपा जी कहते हैं हम प्रैक्टिकल करके देखे, कलकत्ता में कई दिन से बारिश नहीं हो रहा था, हमारे जो विदेशी भक्त थे नव संकीर्तन में गए, उस दिन रात को इतना बहुत जोर से बारिश हुआ है। रूपा जी कहते लेटर में, इसलिए आपका राज्य में ही करो बारिश करो, इसलिए गली गली में सर्वत्र हरिनाम होना चाहिए, पृथ्वी के अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हई वे मोर नाम कर महाप्रभु ने कह दिए हैं, सर्वत्र महाप्रभु के नाम अर्थात हरिनाम के प्रचार हो, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से केवल विश्व का कल्याण हो सकता है, सभी प्रकार के कल्याण उसी के माध्यम से हो सकता है, कोई दूसरे रास्ता नहीं है। और कितने प्लान बनाओ ये सो लोग के कारण है, ये वैज्ञानिक कितने कुछ उपाय, कुछ नहीं होगा, एक के बाद दूसरा आता है, एक बीमारी चला जाता है अभी दूसरा बीमारी होता तो उसका मेडिसिन भी नहीं होता है ना, अभी वो ईस्ट अफ्रीका में फैला हुआ कोई नॉर्थ क्या कहते हैं कोई बीमारी है, आस्ते आस्ते इंडिया में आ गया, मेडिसिन है नहीं है? तो इसीलिए जब तक जब आप भगवान के शरणागत नहीं होगे तब तक कुछ ना कुछ उपाय से निकालते रहेगा, पृथ्वी माता की ये उदाहरण से हुई है, पृथ्वी जब शरणागत हो जाती भगवान फिर इसको रक्षण करते हैं, और जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे पृथ्वी में उपाय से कुछ इधर उधर करते रहेंगे तब तक हमारा रक्षण नहीं हो सकता, जब शरणागत हो जाएंगे सरेंडर करेंगे तो फिर भगवान की इच्छा से सब कुछ कुछ होता है। सुहृदंग सर्वभूतानां ज्ञानत्वं संप्रेषयति भुक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरं, सुहृदंग सर्वभूतानां ज्ञानत्वं संप्रेषयति। उच्यते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराश्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की। समय हो चुका है, कोई तो प्रश्न नहीं होगा किसका, प्रसाद के भी टाइम हो गए। हरे कृष्ण।
Hello.